नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी गुटों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री हैं। तमिलनाडु में राजनीतिक गतिरोध के बीच नई सरकार गठित करने के लिए परस्पर वार्ता जारी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने आज लोकभवन में तमिलग वेत्रिकड़गम टीवीके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय को आमंत्रित किया। लोकभवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि बैठक के दौरान राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उधर केरलम में कांग्रेस पार्टी नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग ने 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और अन्य राज्यों के उपचुनावों से 1,400 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध धनराशि जब्त की है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 2021 के चुनावों की तुलना में 40% से अधिक जब्ती हुई है। पश्चिम बंगाल में जब्ती में अधिकतम लगभग 69% वृद्धि हुई है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। बेंगलुरु अंक तालिका में तीसरे और लखनऊ अंतिम पायदान पर हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।